नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
एक तू ही बचे ना बचेगा कुल घराना, एक तू ही बचे ना बचेगा कुल घराना, लहू की कुदरत को तूने ना पहचाना, वादों का सच्चा और सच उसकी जात है, वादों का सच्चा और सच उसकी जात है, तौबा के साथ ये तो मुक्त सौगात है, तौबा के साथ ये तो मुक्त सौगात है, लहू के बगैर ना शिफा ना नजात है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की दया से आज फिर से कुशल पूर्वक हैं और उसके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं, इसके साथ परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी जो आज वचन को सुनने के लिए साथ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु हमारा महायाजक है और सांसारिक तंबू से कहीं अधिक उत्तम स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे लिए आज भी सेवा करता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए भी सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके मधुर और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक के कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, बोलने और बातचीत करने पाए। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन श्रोता मित्रों के लिए जो इस समय बीमार और निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, या किसी प्रकार की समस्याओं में और तनाव में फंसे हुए हैं। हम विनती करते हैं कि आप उनके साथ हो, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें धैर्य दे और उन्हें छुटकारा दे, ताकि आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आपको पा सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने का मार्ग अभी तक तैयार नहीं था, यह सब उसका प्रतीक था। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, अर्थात आराधक सिद्ध नहीं होंगे। तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग 3 प्रवेश द्वारों और 3 विभाजनों द्वारा अवरुद्ध था। उपासक केवल बाहरी भाग में अपने बलिदानों के साथ आ सकते थे। उपासक मेमना लाकर उस पर हाथ रखकर अपने आप की पहचान उससे बनाकर याजक को दे देता था और फिर वह पीतल की वेदी पर वध किया जाता और तब उपासक उससे आगे नहीं जा सकता था। पवित्र स्थान में केवल याजक ही जा सकता था और परम पवित्र स्थान में तो याजक भी नहीं जा सकता था, वहां पर केवल महायाजक जाता था। अतः तंबू की सेवा कुछ ही समय के लिए उपलब्ध करवाई गई थी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के पास ला सकता है और वही है जो ऐसा कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु के शब्द हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ध्यान दीजिए, सच्ची उपासना ऐसी ही है और सच्ची उपासना आराधना करवाती है। हम एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच गए तो आराधना की कोई समस्या नहीं होगी। मेरे मित्रों, आज मुक्त विचारक उपासना को तुच्छ जानते हैं। वर्षों पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर हैरी एमर्सन फॉस्टिक ने कहा था कि संसार ने यीशु को दो प्रकार से दूर करना चाहा था, एक उसे क्रूस पर चढ़ाकर और दूसरा उसकी आराधना करके। मेरे प्रियो, यह कहना निंदा करना है कि यदि आप उसकी आराधना करें तो आप उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों से अच्छे नहीं। आज हम पवित्र परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं और क्रूसित प्रभु यीशु को मार्ग बनाते हैं। केवल वही एकमात्र है जो हमें आराधना करने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है। इसी कारण पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, इफिसियों की पत्री 5:18-19 में, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यह आराधना है। संसार में परमेश्वर की संतान के लिए सबसे बड़ा रोमांच है कि वह पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा को परमेश्वर की बातें हमारे लिए वास्तविक बनाने दे। मेरे प्रियो, इससे हमारे मन को कैसा महान आनंद प्राप्त होता है। हम में से कुछ को मन में स्तुति गान उत्पन्न करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। मुझे तो जरूर होती है, परंतु निश्चय ही मेरे मन की गहराई में स्तुति गान है। उसकी उपासना करना महान है। मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो हमने इस पृथ्वी पर उपस्थित पवित्र स्थान के बारे में देखा है। वह पवित्र स्थान स्वर्गिक पवित्र स्थान से अवर है। अतः मैं मेरे एक मित्र डॉक्टर वारेन डब्ल्यू वियर्सबी के रूपरेखा काम में लेना चाहता हूं। हमने इस पृथ्वी पर पवित्र स्थान के बारे में जो देखा वह यह है। पहला, वह पृथ्वी पर था, वह सांसारिक सामग्री द्वारा बनाया गया लौकिक स्थान था। दूसरा, वह आने वाले वस्तुओं की छाया मात्र था, वास्तविकता नहीं था। यहां हम प्रायः उलझन में पड़ जाते हैं। हम विलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ते हैं और हमारी उस सांसारिक तंबू में गहन रुचि उत्पन्न हो जाती है, परंतु सच तो यह है कि वह छाया मात्र ही था। जी हां, स्वर्ग में उपस्थित वास्तविक पवित्र स्थान की छाया। तीसरी बात हम जो देखते हैं, वहां आम जनता के लिए प्रवेश वर्जित था, मना था। आप यहूदी होकर भी परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे सीधे नहीं जा सकते थे। आपको प्रथम द्वार पर ही रुककर बलि अर्पित करना होता था। याजक वहां आपकी सेवा में उपस्थित रहता है, परंतु आज हम विश्वासी एक याजक समाज हैं और हम में से हर एक को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है। यह हमारा एक महान सौभाग्य है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मंदिर के विभाजक पर्दे को दो भागों में फाड़ दिया है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सम्मुख उपस्थित है, वह हमारे लिए वहां उपस्थित है। पुरानी वाचा के प्रावधान में इसराइल को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं था। चौथी बात हम देखते हैं, वह अस्थाई पवित्र स्थान था। प्रभु यीशु अनंत समय तक मार्ग खुला रखेगा। मेरे विचार में हमें अनंत काल के लिए किसी की आवश्यकता है कि वह मार्ग खुला रखे। वह लौकिक मंदिर एक अस्थाई प्रबंध था। पांचवी बात हम देखते हैं, वह मनुष्य के मन को बदलने में असमर्थ था। मेरे प्रियो, मैं सबसे अधिक इसी बात पर ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं और वह आपका मन बदल देगा। केवल वही है जो आपको आत्मा और सत्य में आराधना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर सकता है और आपके जीवन में अपने आप को यथार्थ रूप में प्रदान कर सकता है। आज अनेक जन कलीसिया और कलीसिया खेलते हैं, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं उसी प्रकार लोग कलीसिया कलीसिया खेलते हैं। ऐसे अनेक जन हैं जिनमें सफेद बाल वाले भी हैं, समिति के सदस्य, गायन मंडली के सदस्य, संडे स्कूल के शिक्षक आदि। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु मेरे मित्रों, आप उसकी उपासना किए बिना उसकी सेवा कभी नहीं कर सकते। आपके जीवन लोगों में दिखने चाहिए कि आप उसके जन हैं। यदि आप मात्र शिक्षा दे रहे हैं या पद को ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी सेवा कर रहे हैं। आइए हम आगे देखें। एक उत्तम बलिदान, इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, ध्यान दीजिए, आने वाली अच्छी वस्तुओं अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त हुई अच्छी वस्तुएं। तब हम पढ़ते हैं, और भी बड़े और सिद्ध तंबू। यह तंबू मनुष्य द्वारा बनाए गए तंबू के समान नहीं है, वह इस संसार की भौतिक सामग्री द्वारा बनाया गया नहीं है। मेरे मित्रों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आराधना को मधुरता प्रदान करना, चित्रों और खिड़कियों में रंगीन कांच लगाना, मोमबत्तियां और क्रूस रखना आदि सब देह की सेवा है। यह भौतिक पक्ष की सेवा है। इससे मनुष्य की आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो पाती थी। अब हमें यह बोध होना आवश्यक है कि स्वर्ग में एक वास्तविक पवित्र स्थान है और एक महायाजक है। वहां आत्मिक उपासना होती है। आप उसकी उपासना कहीं भी कर सकते हैं। यदि मनुष्य आराधनालय में एकत्र होकर सच में परमेश्वर की उपासना करे तो वह एक महान अवसर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोग ऐसी आराधनाओं में उपस्थित हो चुके होंगे। यह एक अति महान अनुभव होता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे मित्रों, मेरे विचार में यह पद सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु अपना लहू लेकर स्वर्ग में गया था। यदि लेखक यह नहीं कहता है तो फिर मैं नहीं जानता कि वह क्या कहना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं, बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, यह तो वास्तविक लहू है, अपने ही लहू के द्वारा। यह क्रूस पर बहाया गया उसका वास्तविक लहू है, उसे लेकर के वह प्रवेश किया। कैसे? अपने लहू के द्वारा। उसका बलिदान अति उत्तम था और सच्चे पवित्र स्थान के योग्य केवल वही था। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे प्रियो, यहां मुख्य बात यह है कि याजकों की तुलना में प्रभु यीशु एक बार पवित्र स्थान में गया और हमारे लिए मुक्ति प्राप्त की। इसराइल का याजक बार बार पवित्र स्थान में जाता था, परंतु वह एक अस्थाई स्थल था। प्रभु यीशु ने तो एक ही बार में मुक्ति उपलब्ध करवा दी। यहां प्रभु यीशु के बलिदान के अधिकार और महत्व पर बल दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु का जीवन किसी का उद्धार नहीं करवा पाया था। मेरे प्रियो, आप उसकी शिक्षाओं को अपनाकर सोच सकते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, परंतु उसकी शिक्षा से कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु उसके द्वारा प्राप्त मुक्ति उद्धार दिलाती है। इसलिए आप यह ना सोचें कि आपने उसके बारे में जान लिया है, पढ़ लिया है, उसकी शिक्षाओं को आप जानते और मानते हैं तो आपका उद्धार हो गया। जी नहीं, आप गलत फहमी में न रहें। उसके मृत्यु के द्वारा ही आपका उद्धार होता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कलोर की राख। गिनती की पुस्तक अध्याय 19 में लाल कलोर की राख के निर्देश दिए गए हैं। उसे पूरा जलाकर उसकी राख को पवित्र स्थान में रखा जाता था। जब कोई अशुद्ध हो जाता था, जैसे मृतक देह के स्पर्श द्वारा, तब याजक इस राख को पानी में घोलकर उस पर छिड़कता था और इस प्रकार से वह शुद्ध होकर समाज में प्रवेश कर सकता था। यहाँ यह कलोर एक विशेष रूपक है, यह मादा है। पत्रस कहता है, पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 7 पद में, कि स्त्री एक दुर्बल पात्र है। हमारी अशुद्धता हमारी दुर्बलता से आती है। प्रभु यीशु ने देह में हमारी दुर्बलता का अनुभव किया। मेरे मित्रों, लाल रंग का अर्थ है कि प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बना। लाल पाप का रंग है। देखिए यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में वह कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। अतः लाल कलोर प्रकट करता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बना। उस पशु को निष्कलंक होना था, अन्यथा वह प्रभु यीशु का प्रतीक नहीं हो सकता था। प्रभु यीशु पवित्र, शुद्ध और निर्दोष तथा पापियों से अलग था। मेरे मित्रों, इस कलोर की एक विशेषता और भी थी कि वह कभी जुए में न जुता हो। यह प्रभु यीशु जो हमारे लिए पाप बना उसका प्रतीक है कि वह कभी पाप के दासत्व में नहीं था। यह कलोर छावनी के बाहर महायाजक द्वारा मारी जाती थी। प्रभु यीशु हमारे लिए महायाजक और बलि दोनों ही था। उसका लहू महायाजक 7 बार तंबू के सामने छिड़कता था। लोग प्रायः 7 अंक को धर्मशास्त्र में परिपूर्णता का अंक मानते हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु की बलि एक संपन्न कार्य था। एक ही बलि द्वारा विश्वासी के पाप दूर हो जाते हैं। उस कलोर की देह को महायाजक की दृष्टि में जलाया जाता था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु ने स्वेच्छा से अपने आप को दे दिया, परंतु हम शायद यह नहीं जानते कि उसकी मृत्यु पर स्वर्ग में कैसा दुख मनाया गया था। मेरे मित्रों, गिनती की पुस्तक में लिखा है कि इस कलोर के साथ देवदार की लकड़ी और जूफा और लाल रंग का कपड़ा भी जलाना आवश्यक था। इससे मुझे एक बात समझ में आती है, सुलेमान ने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की है, पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 33 पद में। सुलेमान वनस्पति वैज्ञानिक था। वह प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञाता था। इससे प्रकट होता है कि प्रभु यीशु ने मानव जाति ही नहीं संपूर्ण जगत का उद्धार किया है। हम पाप से ग्रस्त संसार में रहते हैं जो कहरता और अर्थनाद करता है। उसका उद्धार होगा और पाप का अंत होगा। मेरे मित्रों, पद 23 में लिखा है कि स्वर्ग को भी शोधन की आवश्यकता है। आप कहेंगे, क्या स्वर्ग भी अशुद्ध है? जी हाँ, वहीं तो पाप उत्पन्न हुआ था, लूसीफर जो शैतान है, शैतान ने वहीं तो विद्रोह किया था। अतः प्रभु यीशु का बलिदान पर्याप्त और सिद्ध था। वह एक संपन्न कार्य था जो परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि के लिए था, क्योंकि वह पाप से दूषित हो गई थी। मेरे प्रियो, कलोर की यह राख एक शुद्ध स्थान पर रखनी थी और पानी में घोलकर काम में ली जानी थी। पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। परमेश्वर का वचन ही विश्वासी के जीवन में पाप को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के बलिदान ने भविष्य के लिए भी उद्धार उपलब्ध करवाया है, आपका और मेरा उद्धार। उसने पुराने नियम के पवित्र जनों के लिए उद्धार उपलब्ध करवाया है। वे विश्वास के कारण उद्धार की अवस्था में थे। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया था। कैसे? उसने परमेश्वर पर विश्वास करके मेमना बलि चढ़ाया। क्या वह मेमना पर्याप्त था? जी नहीं, परंतु वह प्रभु यीशु का सूचक था। प्रभु यीशु का बलिदान अतीत को देखता है और भविष्य को भी देखता है, और यही कारण है कि प्रभु यीशु का बलि सारे मानव जाति को उद्धार दिला सकता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप पापमय जीवन जी रहे हैं और अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मार्ग है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वह आपके पापों के लिए बलिदान हुआ है और वही आपको उद्धार दे सकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।